ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सब पंखा बंद कर दो, बहुत आवाज आ रहा है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग, आगे आप लोग आ जाना, वो लेट लतीफाने वाले पीछे बैठेंगे, तो आप थोड़ा आगे जाओ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवतम महापुराण के दसम स्कंद से अध्याय 35 और श्लोक संख्या 24 और 25। समहावर अर्डर मुझे देखने में कन्फ्यूजन हो गया कि आज है 10th कैंटो का चैप्टर 33 और श्लोक संख्या 24-25। तो मैं पढ़ा था चैप्टर 33 का 24-25 श्लोक, लेकिन बाद में चिंतरूप प्रभु बताया कि नहीं नहीं 35 का है। तो चलो जो है उसी को हम बात करेंगे। दो श्लोक है। मदा विघूर्णिता लोचना इसता मानद स्वसुहृदाम वनमाली बदरा पांडु बदना मृदु गंडम मंडयन कनका कुंडला लक्ष्म्या जदुपति द्विरजराज बिहार यामनी पति इव एष दिन अन्ते मुदित वक्त्रः उपयाति दुरन्तं मोचयन् व्रज गवां दीना तापमा। मद विघूर्णतलोचन ईशन मद विघूर्णितलोचनीशन मानद ससुहृदा वनमाली मानद ससुहृदा वनमाली बदर पांडु बदर पांडु बदनो मृदुगंडम मंडयान कनक कुंडल लक्षया यदुपति द्विजराज विहारो यामिनी पतिरैव वैश दिनान्ते मुदित वक्त्र उपयाति दुरन्तम् मोचयन व्रजगवा दीनतापम् पढ़ी एक एक श्लोक, एक आदमी का श्लोक।
Thank you.
एक आदमी एक श्लोक, दो लोग और माता जी गया मद विघुर नितलोचन ईशान मान दस सुहृदाम बनमाली बदर पांडु बदनो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या यदुपति दिरजाय बिहारो यामनी पतिरैवै स दिनान्ते मुदित वक्रोपयाति दुरन्तम् मोचयन व्रजगवां दीनतापम् मद नशे में विघूर्णितम घूमती हुई लोचना आंखें ईसत कुछ कुछ मानद मान प्रदर्शित करते सहृदाम अपने शुभचिंतक मित्रों को बनमाली वन के पुष्पों की माला पहने बदरा बेर फल की तरह पांडु श्वेताभ बदना मुख मृदु कोमल गंडम गाल मंडयन अलंकृत किए हुए कनक सुनहरे कुंडल कान के आभूषणों की लक्ष्म्या शोभा से जदुपति जदुवंश के स्वामी भगवान श्री कृष्ण द्विरजराज शाही हाथी की तरह बिहार खेलकूद यामनी पति चंद्रमा इव सदृश एष वह दीन अंते दीन बीतने पर संध्या के समय गोधुली के समय मुदितः प्रसन्न वक्त्र मुख उपायति आ रहे हैं दुर्दंतम दुर्लभ लोचनम भगाते हुए ब्रज ब्रज की गवाम गौओं के या जिन पर कृपा की जानी चाहिए उनकी मोचयन भगाते हुए ब्रज ब्रज की सॉरी गवाम गौओं के या जिन पर कृपा की जानी है उनके दीना दीन के तापम पीड़ादायी धूप। अनुवाद और तात्पर्य। जब श्री कृष्ण अपने शुभचिंतक सखाओं को आदरपूर्वक शुभकामनाएं देते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस तरह घूमती है जैसे नशे में हों। वे फूलों की माला पहने हैं और इनके कोमल गालों की शोभा उनके सुनहरे कुंडलों को चमक से तथा बदर के बेर के रंग वाले उनके मुख की श्वेतता से बढ़ जाती है। रात्रि के स्वामी चंद्रमा के सदृश अपने प्रसन्न मुख वाले यदुपति राजसी हाथी के अदा से चल रहे हैं। इस तरह से ब्रज की गौओं को दिन भर की गर्मी से छुटकारा दिलाते हुए संध्या समय घर लौटते हैं। तात्पर्य। गवाम शब्द संस्कृत के गो शब्द से व्युत्पन्न है जिसके दो अर्थ हैं गाय तथा इंद्रिया। एक और अर्थ है भूमि। इस तरह श्री कृष्ण ने ब्रज लौटकर वृंदावन के वासियों को दिन भर अपने से विलग रहने से उत्पन्न उनकी आंखों तथा अन्य इंद्रियों की पीड़ा को हर लिया। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। तो जब मैं यहाँ से अमेरिका गया उस समय अध्याय 28 चल रहा था तो मैं समझा कि रास पंचाध्यायी का अध्याय चलता होगा, लेकिन बहुत जल्दी ही 6 अध्याय 1.5 महीना में खत्म हो गया। तो जब मैं कल सुना कि 33वां अध्याय है रास वाला तो मैं कहा चलो कुछ तो मिला, लेकिन सुबह सुबह अचिंद्र प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं 35वां अध्याय है, गड़बड़ हो गया। चलिए ये अंतिम अध्याय है इस प्रकरण का। जैसा कि भागवत महापुराण का ये दसवां स्कंद जो है इसे भागवत के दसम स्कंद जो है उसके 5 प्रकरण हैं, और जो ये 5 रास पंचाध्यायी का अध्याय है 29 से 33 ये 5 अध्याय भागवत के 5 प्राण हैं। दस प्राण होते हैं, लेकिन जो प्राण पंच प्राण हैं वे गौड़ प्राण हैं या प्रमुख प्राण हैं, जैसे अपान, उदान, समान, व्यान, प्राण, ये सब जो पांच वायु हैं वो बड़े श्रेष्ठ हैं। वैसे ही ये पांच जो अध्याय है, इसे रास पंचाध्याय भी कहा जाता है, ये बड़े ही श्रेष्ठ अध्याय हैं। तो पूरे भागवत महापुराण में श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं, पंच प्रकरण नियत्र चतुर्भी जन्म सत्पते अष्टाविंशभि पूर्व तामस त्वात्प्रजोधुति तथैव राजसानां च जादवानां च विशेषतः सात्विक अनेक विसंत्याम निष्प्रपंचाश्चकर भगवान एति अन्यत्रो तदर्थ षड भग भगा विधा। तो पांच प्रकरण जो है, जो प्रथम प्रकरण है वो कहलाता है जन्म प्रकरण, जिसका वर्णन अध्याय एक से लेकर के पांच चार अध्यायों में किया गया है, एक दो तीन चार। उसके बाद प्रारंभ होता है अध्याय पांच से अध्याय पैंतीस के बीच में, यह है तामस प्रकरण। तामस प्रकरण में भगवान जो तामसी प्रकृति के जितने भी हैं उन लोगों का उद्धार किए हैं। पुतना से प्रारंभ होता है यह लीला और अंत में आता है अरिष्टासुर का वध। आमीन। उसके बाद भगवान चले जाते हैं मथुरा। ऐसे ब्रज का पूरा कार्य भगवान कर लिए हैं। भगवान अब किशोर लीला में प्रवेश किए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु और रघुपति उपाध्याय जब मिले थे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रघुपति उपाध्याय से पूछे,
बालक कौशेर का पान कौशेर का पांडक बाल्य पागुंड कौशेर्य श्रेष्ठ मनिकाय कैशोर कम्बयम धेय कहे उपाध्याय।
चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तीन भगवान के जो रूप हैं, बाल्य रूप, बाल्य यानी कुमार अवस्था, पौगंड और किशोर अवस्था, इन तीनों में श्रेष्ठ किसको आप मानते हैं? तो रघुपति उपाध्याय कहते हैं, वयम कैशोरकम धेयम कहे उपाध्याय, कहते हैं कि जो किशोर अवस्था है उसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं, यानी 10 से 15 साल का अवस्था, और भगवान इसी अवस्था में थे। अब भगवान किशोर अवस्था में प्रवेश किए और गोपियों का जो अंतिम इच्छा था कि कृष्ण हमें पति के रूप में वरण करें, तो भगवान कृष्ण उन लोगों को ये पति के रूप में वरण किए ये रास पंचाध्यायी के द्वारा। तदुपरांत ब्रज में विभिन्न प्रकार का बात होने लगा। ए रास के बाद, जगा दीजिए जो सो रहे हैं पीछे वाले, तो रास के बाद विभिन्न, जैसे सुखदेव गोस्वामी स्वयं, सॉरी परीक्षित महाराज बिल्डर हो गए और परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान तो आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए, लेकिन ये मध्यरात्रि में ब्रज के स्त्रियों को बुला करके रास करने, कुछ विवाहिता हैं कुछ अविवाहिता हैं, ये तो अधर्म है, तो धर्म का प्रचार करने आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, आप लोग सुने होंगे ना एक कथा, तो ऐसा क्यों किए? तो सुख परिचित को कोई भ्रम नहीं था, लेकिन हम लोगों में भ्रम होगा, तो हम लोगों के भ्रम को दूर करने के तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुग्रहाय भूताना मानुषी देह आश्रितम, हम लोगों पर कल्याण करने के लिए भगवान मनुष्य का देह धारण करते हैं और मानवीय लीला करते हैं। अन्य विभिन्न प्रकार से सुखदेव को समझाए, वैसे ही ब्रजवासी लोग भी बात कर रहे थे। सामने तो किसी को आकर के बात करने का हिम्मत नहीं था कृष्ण के सामने, लेकिन पीछे सब बात कर रहे थे कि ये ठीक नहीं है, कृष्ण जवान हो गया है, हमारी लड़कियां जवान हैं, क्योंकि पहले 12 साल मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं लड़कियां जो हैं 12 साल के बाद बाप को बेटी का मुंह नहीं देखना चाहिए, यानी 12 साल मतलब मासिक प्रारंभ हो जाता है, मां बनने की योग हो जाती है और उसे माता कहा जाता है शास्त्रों में। यहां कह सकता हूं, अमेरिका में कहना मुश्किल होगा, तो उनको माता कहते हैं। हमें कई एक जगह देखें जैसे देहूती, देहूती के लिए मनु जी जब कर्दम मुनि को दे रहे थे तो माता शब्द प्रयोग किए हैं। प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि जब मेरी बहन जब 12 साल की हो गई, उसके बाद मेरी मां ने पिताजी से कहा कि जल्दी इसके लिए लड़का ढूंढो और नहीं शादी कराओगे तो मैं गंगा में डूब करके आत्महत्या कर दूंगी। राइट, आप लोग लेक्चर सुने हो ना। तो ये 12 साल के बाद लड़कियां जो होती हैं वो विवाहिता हो जाती हैं, विवाह करने की जो हो जाती हैं। तो इस प्रकार से सब लोग बात कर रहे थे, ब्रज में बात हो रहा था। तो प्रजल्प का कोई पंख और पैर नहीं होता है, आप लोग जानते हैं ना। प्रजल्प शुरू होता है और शुरू होते होते सत्य तो कहीं छिप जाता है, ऐसे ब्रह्मचर्य यात्रा में होता है, मैं सुना हूं बहुत प्रजल्प होता है आजकल। सत्य कहीं और छिप जाता है और असत्य बात जो है वह आ जाता है। एक महान कवि थे लक्ष्मण सेन के दरबार में, उनका नाम था बाण भट्ट। तो बाण भट्ट एक बार क्या हुआ, मैं पूरा कहानी कहूं तो बहुत समय लगेगा, एनीवे तो बाण भट्ट बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन सब लोग उनका खूब प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके पिताजी प्रशंसा नहीं करते थे। तो बाण भट्ट को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया और गवाण भट्ट सोचे कि लगता है कि मेरे पिताजी मुझसे द्वेष करते हैं, मेरे अगेंस्ट हैं, सब लोग मेरा प्रशंसा करते हैं लेकिन पिताजी कोई प्रशंसा नहीं करते हैं। तो उनका कुशाग्र बुद्धि और प्रशंसा जो है मद है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, श्रुता एक ऐश्वर्य है, एक मद है, एदमान मद अपमान एक मद है। और मद जो होता है, अहंकार जो होता है, जिसको कोई कुछ प्राप्त हो जाता है, जब अहंकार हो जाता है तो वह व्यक्ति को डुबो देता है। भक्तों को हमें सावधान रहना चाहिए, किसी प्रकार का अहंकार ना हो। ये क्षमता जो कुछ मिली हुई है ये भगवान कृपा से मिली हुई है। तो बाण भट्ट को अहंकार हो गया और वे निर्णय किए कि आज मैं अपने पिताजी का गला काट दूंगा क्योंकि मुझसे वे द्वेष करते हैं। तो गरीब बेचारा परिवार था, उनके पास एक ही रूम था और पर्दा बीच में लगा दिए थे, तो उधर माता पिता सोते थे और बाहर बाण भट्ट सोते थे, और हाथ में बाण भट्ट चौपर लेकर के सोए हुए थे कि रात को पिताजी का मैं गला काट दूंगा जब सो जाएंगे। तो भगवान सबके हृदय में है, तो उनकी माता जी उनके पिताजी से पूछ रही थी सोते समय कि देखिए जी, आपका पुत्र इतना कुशाग्र बुद्धि का है, लोग उसका इतना प्रशंसा करते हैं, लेकिन आप अपने मुंह से आज तक कभी प्रशंसा नहीं की है, क्या कारण है? उसको बेचारे को आप थोड़ा प्रशंसा करेंगे तो उसे बड़ा आनंद आएगा, क्या कारण है? इतना सुनते ही बाण भट्ट के पिताजी फपक फपक कर रोने लगे। तो समझे क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? तब उन्होंने कहा, अरे पगली, क्या तुम नहीं जानती हो, मैं भी चाहता हूं प्रशंसा करना। कौन बाप प्राउड नहीं हुआ कि जब उसका पुत्र ऐसा करता हो तो क्यों नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन मैं उसका प्रशंसा करूंगा उसी दिन से उसकी उन्नति रुक जाएगी। ये बात लॉजिकली कोई समझ नहीं पाएगा लेकिन सत्य है। यदि बाप अपने बेटा का प्रशंसा करेगा तो बेटा बर्बाद हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं शिष्य और पुत्र दोनों को ताड़न करना चाहिए। प्रशंसा करने से सिर के ऊपर आ जाता है अहंकार, तो कहे कि जब मैं प्रशंसा करूंगा तो इसकी उन्नति रुक जाएगी। जब बाण भट्ट यह बात सुने तो मानो उनको हार्ट अटैक हो गया कि बाप रे बाप, मैं क्या सोच रहा था और मेरे पिताजी क्या सोच रहे थे। वो तुरंत अंदर गए और पिताजी के चरणों में पड़ गए और क्षमा मांगने लगे कि मुझसे बहुत गलती हो गई। तो पिताजी ने कहा, क्या गलती हुई थी? तो बाण भट्ट सच सत बताए, कहे देखिए मैं चौपर लेकर सोया था, आज आपका मैं गला काटने वाला था, लेकिन मुझसे बहुत गलती, बताइए मैं क्या, मेरे पनिशमेंट दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे दंड चाहिए। पिताजी ने कहा, तुम सोचा था, गला तो नहीं काटा था ना, कोई बात नहीं, सोचा था, मन में आया था। कहा कि नहीं नहीं, लेकिन मन में भी आपके प्रति एक पाप हो गया है, बहुत खराब है, मैं जीना नहीं चाहता हूं, हमें दंड दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जाओ आज के बाद ससुराल में रहो। पहले जमाने में ससुराल में रहना बहुत बड़ा दंड था, आजकल तो सब निर्लज हो गए हैं, ससुराल में रहते हैं बल्कि खोजते हैं कि कौन पत्नी है पैसा वाली तो उसके पास रहूंगा, या कौन ऐसी लड़की है जिसे कोई भाई हुई नहीं है वही शादी करेंगे। इतने निर्लज हो गए हैं लोग, शास्त्र को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो बाण भट्ट गए ससुराल में रहने के लिए, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, अब गांव वाले बात करने लगे। हमारे यहां बिहार में कहते हैं, तीन दिन के पहुना, चौथा दिन केहुना, मतलब तीन दिन तक रिश्तेदार हैं, ठीक हैं, पाहुन हैं, चौथा दिन केहुना, मतलब कोई नहीं है। तो गांव वाले खूब निंदा करने लगे। बात जब चलने लगी गांव में, तब उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए जी, नाम बदनाम हो रहा है, अब आपको कुछ करना पड़ेगा, यहां नहीं रह सकते हैं, हमारे मेरे माता पिता हैं, उनका नाम बदनाम होगा, गलती क्या है? तो उन्होंने कहा, कुछ भी हो, पिताजी का आदेश, मैं करूं क्या, मुझे रहना ही पड़ेगा, मेरा यही दंड है। तब उन बाण भट्ट महान कवि थे, बुद्धिमान थे, तो कहे कि ठीक है, गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनाए, वहां रह रहे थे और पत्नी घर से खाना ले जा रही थी। वहां गांव में एक मेला लगता था, बहुत बड़ा गांव था, पहले तो शहर था नहीं, बड़ा गांव ही शहर था, तो मेला लगता था। वहां के जो राजा थे उनका आदेश था कि मेले में कोई वस्तु यदि बच जाए, सब कुछ बिक जाना चाहिए, यदि कोई वस्तु बच जाए तो कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो राजकोष खरीद लेगा। तो बाण भट्ट एक ताम्र पत्र पर कुछ लिख करके और अपने पत्नी को दिए और कहे, ले करके जाओ और इसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा में बेचना। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, मिलियंस ऑफ डॉलर उन दिन। और बेचारी लेकर गई, अब मेला में पकौड़ा बिक रहा था, बलून बिक रहा था, जानते हो गांव का मेला, सब बिक रहा था, सब लोग खरीद रहे थे। इसके पास, तुम क्या बेच रही हो? तो कहे, कितना दाम है? 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, कोई नहीं खरीदता था। अब शाम हो गया, संध्या, उस समय राजा कहीं विदेश गए थे, वहां पर नहीं थे। तो रानी जो थी अपने पति का आज्ञा पालन करते हुए राज कोषाध्यक्ष को लेकर के देख रही थी। भगवान सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे थे, संध्या हो चुका था, तब वही स्त्री बैठी हुई थी, कोई खरीद नहीं रहा था। तो रानी आई और पूछी कि क्या बात है? तो रानी ने बता उसने बता दिया कि यह बात है। तो कहा, कोई नहीं खरीदा? कहा, कोई नहीं खरीदा। कहा, तुम ज्यादा दाम मांग रही हो, एक स्वर्ण मुद्रा है, पत्ता के लिए कौन देगा? तब क्या करोगे, कोई नहीं खरीदेगा था। तो कहा मैं तब तक से यहां रहूंगी जब तक से कोई खरीदार न मिल जाए, क्योंकि मेरे पति का यह आदेश है। पहले पति परमेश्वर थे, पत्नियां मानती थी। तो रानी को तुरंत झटका लगा, एक यह पत्नी है जो अपने पति के आदेश का पालन करने के लिए यहां पर रातों रात जब तक से बिक न जाए तुम, और एक मैं पत्नी हूं, हमारे पति का भी आदेश है कि कोई भी बचा चीज नहीं रहना चाहिए, सब खरीद लेना चाहिए, तो मैं ही पत्नी धर्म का पालन करूंगी। तो उसने खजांची को बोला स्वर्ण मुद्रा इसको दो, एक लाख स्वर्ण मुद्रा दे दो। वो खरीद लिए। अब एक खजांची था, बेईमान आदमी था। अब ये प्रजल्प करना शुरू किया कि रानी ने बहुत गलती कर दिया, एक लाख स्वर्ण मुद्रा में एक पता खरीदा। रानी ने उसको ब्यूटीफुली फ्रेम करा करके और जो ड्राइंग रूम था वहां पर लगवा दिया था। अब ये बात बढ़ने लगा कि रानी ने बहुत गलती किया, रानी ने बहुत गलती, रानी ने क्या किया कोई बात नहीं कर रहा है, रानी ने बहुत गलती किया सब लोग बात किया, पूरा बाउंडर फैल गया राज्य में कि रानी ने बहुत गलती की। राजा आए तो एयरपोर्ट पर ही उनको सूचना तुरंत मिली, हॉट न्यूज था, उनको तुरंत मिल गया कि राजा ने, रानी ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। तो राजा सोचे क्या बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या कर सकती है। तो पूछा पर कि राजा क्या किया था, ये हम नहीं जानते लेकिन बहुत बड़ी गलती की है। तो सोचा कि हम बहुत दिन तक थे, स्त्री स्वभाव हो सकता है किसी के साथ में अवैध संबंध हो गया होगा। राजा अपने कंक्लूजन पर आ गए। अब जब राजा आए रनिवास में, जाने से पहले वो बैठे हुए थे वहां पर और अपना तलवार निकाल लिए थे कि रानी जेव आएगी उसका मैं गला काट दूंगा। तब तक से उनका नजर पड़ गया वो बाण भट्ट के द्वारा लिखे गए स्वर्ण पत्र था ना उस पर, और बाण भट्ट ने क्या लिखा था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में नाम हसाए। जानते हैं आप लोग ना, एक कहावत जानते हो ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, जो बिना विचार करता है बाद में पछताना पड़ता है। तो राजा तुरंत तलवार अंदर डाल दिया और कहा पता तो लगाऊं कि भाई कि रानी ने गलती क्या किया है। जब पता लगा तो राजा को बहुत ग्लानी हुई और कहा कि अरे ये जो व्यक्ति जो लिखा है वो है कहां, उसको बुला कर लाया जाए, वो कहां पर है, कहां रहता है, उसको बुला कर लाया जाए। आज यह लिखा हुआ रानी का जान बचा लिया, यदि ये नहीं होता तो रानी का गला कट जाता। उसको बुलाया गया, तब बाण भट्ट को बुलाया गया और महाराज लक्ष्मण सेन ने उसको अपने राज्य में उनको कवि के रूप में अपॉइंट किया। तो बाण भट्ट बड़े फेमस कवि हैं, महाराष्ट्र कवि हैं। तो मैं कह रहा था कि बिना विचारे जो करे, अब ए हरि बोल, ये दरवाजा बंद कर बात करो। तो वैसे ही ब्रज में अब हल्ला होने लगा, इन्हों सब जगह प्रजल्प का कोई यहां, मैं प्रजल्प का बात कर रहा था कि उसका पैर और पंख नहीं होता है। तो हम लोग असली चीज भूल जाते हैं, क्या हुआ नहीं, बिना बेचारे जो करे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बाद में पछताना पड़ता है। तो सोच समझ कर कोई बात कहना चाहिए, क्यों कहा जाता है बाण कमान से और शब्द जबान से जब निकल जाता है तो पुनः वापिस नहीं आता है। यह है प्रजल्प। तो ब्रज में प्रजल्प हो रहा था तो कृष्ण ने अपने मित्र मधुमंगल से पूछा, पंडित जी थे, पूछा भाई बताओ हमें क्या करना चाहिए, ऐसा बात हो रहा है, तुम तो जानते हो ऐसा बात हो रहा है। तो कृष्ण ने कहा, मधुमंगल ने कहा, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड, जब तुम यहां पर रहेगा तो ये प्रजल्प चलता ही रहेगा, तो ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि अब तुम यहां से जाओ, कहीं चले जाओ कुछ दिन के लिए। तो अब तो ब्रज का पूरा काम खत्म हो गया था, और भगवान जाना चाहते थे मामा कंस से मिलने के लिए, तो कैसे जाएंगे? कुछ कारण होना चाहिए, सर्व कारण कारण भगवान है, लेकिन उनको जाने का भी कारण होना चाहिए। तो प्रजल्प कारण था भगवान को ब्रज से मथुरा जाने का, और तब भगवान ने व्यवस्था कराया, वो आगे के अध्याय में हम लोग पढ़े 36 में, भगवान ने व्यवस्था कराया कि किस प्रकार से कंस अक्रूर जी को भेजे हैं और लेकर के बाद में कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी मथुरा गए हैं। तो ये अंतिम अध्याय है यह इस प्रकरण का, यानी तामसी प्रकरण का ये अंतिम अध्याय है, और ब्रज लीला का भी यह अंतिम अध्याय है। उसके बाद जो अध्याय प्रारंभ होगा वह राजसी और सात्विकी और ईश्वर्यमयी लीलाओं का प्रारंभ होगा। उसके बाद भगवान ब्रजनंदन नहीं वासुदेव कृष्ण का लीला प्रारंभ होगा। अब तक से ब्रजनंदन श्याम सुंदर का लीला था, तो यहां तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं अंतिम अध्याय है, यह ब्रजनंदन श्याम सुंदर का लीला है। मैं सोचा था कि जो रास पंचाध्यायी है, जो पांच प्राण हैं, उसमें पांच विषय वस्तुएं हैं, उन पांच विषय वस्तुओं का थोड़ा संक्षिप्त में व्याख्या करूंगा। प्रथम विषय वस्तु है वह है संयोग का। ब्रज में सब लोग कृष्ण को अपना मानते थे, सब लोग कृष्ण को अपना मानते थे, और चाहते थे कृष्ण को देखना, जो विवाहित था वह भी, जो न विवाहित था वह भी, सब के सब कृष्ण को प्रेम करते थे। मैं कथा न भक्ति स्वामी सिंधु में बहुत छोटे छोटे इन लीलाओं का वर्णन किया गया है। एक गोपी जो उसकी जो नई नई ब्याही बहू आई थी, उसको समझा रही थी कि देखना जब कृष्ण जाएगा गोचारण करने के लिए और गोचारण करके आएगा तो तुम कभी मत देखना, उसको जबरदस्ती अंदर रखे थे घर के। और जब कृष्ण गोचारण करने जा रहे थे तो एक गोपी स्वयं छत पर चढ़ कर करके और कृष्ण को देख रही थी, और कृष्ण के साथ जा नहीं सकती थी तो उसका प्राण कृष्ण के साथ चला गया और वह कृष्ण प्रेम में के विरह में विक्षिप्त हो गई। बाद में बहू आकर के उसको जगाई, कही कि देखा आपने हमको ना जाने के लिए बोला लेकिन आप स्वयं कर रहे थे। तो कृष्ण प्रेम ऐसा था इन गोपियों से। अभी दामोदर लीला चल रहा है, इसमें क्या देखने को मिलता है? ये जो यशोदा मैया के पास डेली उलाहनाएं जाया करती थी, वो सब गोपियां जाती थी कृष्ण के दर्शन के लिए और उलाहना देती थी। वो बुलाती थी कृष्ण आओ मेरे घर में ताजा मक्खन है, कोई भक्त बुलाए और भगवान ना जाए, भगवान जाते थे और जाने के बाद उलाहना देती थी। तो ये गोपियां कृष्ण को देखना चाहती थी, तो भगवान उनके इच्छा को पूरा करने के लिए जिस समय भगवान चिरहरण किए उस समय कहे थे इन गोपियों को कि तुम लोगों का इच्छा मैं पूरा करूंगा, और उनके इच्छाओं के कामनाओं का को पूरा करने के लिए भगवान ये पांच अध्यायों में जो वर्णन किया गया है रास पंचाध्यायी, ये प्राण है रास पंचाध्यायी पूरे भागवत का। तो प्रथम अध्याय जो है श्लोक अध्याय 29 जो है वह संयोग का लीला है, और अध्याय 30 जो है वह वियोग का लीला है। भगवान शरद पूर्णिमा के अर्धरात्रि को जब बुलाए इन गोपियों को, तो उस समय गोपियां आई, सब कुछ छोड़ करके आई, और कृष्ण से वार्ता होने लगी। कृष्ण पहले धर्म जो परीक्षित महाराज किए थे, प्रश्न किए थे कि कृष्ण पहले धर्म संबंधी वार्ता किए, धर्म क्या है स्त्री धर्म क्या है। और गोपियों को बड़ा देखे कि वे बड़ी नाराज हो गई, यू नो। तब भगवान समझाए बुझाए, और फिर उसके बाद में जो इंट्रोडक्शन का ये लीला है, संजोग लीला, तो जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं वैसे कृष्ण जब मिले गोपियों से तो उनके कंधों पर दोनों हाथ रख करके सामने कृष्ण देख रहे थे, और प्रत्येक गोपियों के साथ में। तो सब गोपियां सोचती थी कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं, कृष्ण दूसरे के साथ है। जोग माया के प्रभाव से ये देख नहीं पा रही थी। इसमें भी कारण है क्यों नहीं देख पा रही थी, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके अंदर जाना चाहते थे। आनंद दो प्रकार का होता है, कोई जैसे हम लोग डेली दर्शन करने आते हैं, भगवान को देखते हैं कितना आनंद आता है, चाहे जन्माष्टमी हो या कोई नया ड्रेसिंग हुआ, डेली देखते हैं, लेकिन उसे हरी बोल खूब जोर से ये करते हैं, कितना आनंद रहता है। ये ट्रांसजेंडल आनंद है, लेकिन है ये बाहर का आनंद, इस चक्षु से देखा हुआ आनंद है। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि अंदर और बाहर दोनों एक ही चीज हो। तब गोप्यहता प्रतिपद सर्व विषय श्रेयान समाप्य प्रियम स्वधीनाम सपदि प्रति स्वयं सकृता अति गर्भ दधु। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण हमारे समक्ष आ गए हैं, कृष्ण हमारे हैं एकमात्र, तो कृष्ण ने सोचा कि इन लोगों को मुझसे आनंद नहीं है, आनंद इनको इनके गर्व से, इनके अभिमान से आनंद है। इनको आनंद आ रहा है कि कृष्ण हमारे हैं, ये अभिमान है। गोपियों में अभिमान हुआ, अति गर्व दधु, अत्यंत गर्व हुआ, अत्यंत अभिमान हुआ, उन्हें आनंद हुआ कि कृष्ण हमारे हैं। जैसे हम नचाते हैं वैसे कृष्ण जाते हैं, जैसे रसखान कवि कहते हैं छछिया भरी छाछ पर नाच नचाई, यू नो, कृष्ण को नचाती थी गोपियां, तो वैसे कृष्ण नाचते थे। और भगवान ने सोचा कि जब इन लोगों को इसी से आनंद मिल रहा है, इनके गर्व से ही, तो मेरी आवश्यकता क्या है। जब भी कहीं भक्तों के हृदय में, इन मन में एक गर्व आ जाता है, और वो गर्व से गर्भित रहता है, और उसको उस गर्व से आनंद आता है, चाहे धन का गर्व हो, चाहे सौंदर्य का गर्व हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का गर्व हो, चाहे उच्च कुल में जन्म का गर्व हो, पोजीशन का गर्व, कोई भी गर्व हो, यदि उस गर्व से आनंद आता है तो कृष्ण वहां से चले जाते हैं। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि जहां सम्मान न हो वहां नहीं रहना चाहिए। तो जी गोस्वामी कहते हैं, लोकश्च यदि बहुराजा राष्ट्र बहस्ति जंघ्यति भंग तदा तस्यांतरहित हितेसि हिते इति किलम सो अंतर दधे माधव। यदि कोई राज्य है और उसमें बहुराजा राष्ट्र बसति, इसी सिद्धांत के अनुसार एक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जी गोस्वामी, यदि कोई राज्य है और उस राज्य में बहुत से राजा होंगे तो कन्फ्यूजन होगा। राजा एक होना चाहिए, यदि कई एक राजा होंगे तो कहेगा प्रजा को ए खड़ा हो जाओ, दूसरा कहेगा बैठो, तीसरा कहेगा इधर जाओ, चौथा कहेगा इधर करो, ए सोने वाले जगो हरि बोल, जेट लैग तो मुझे होना चाहिए, अमेरिका से मैं आया हूं, तुम लोगों को जेट लैग क्यों हो रहा है, सो रहे हो तुम लोग क्लास में, बाद में सो लेना। तो कहते हैं लोकाश्च यदि बहुराजा राष्ट्र बसति जंघंती भंग तदा, यदि किसी राज में अनेक राजा हो तो प्रजा का क्या होगा, जंघंती भंगम तथा हाथ पर टूटेगा, मतलब दुखी रहेंगी प्रजा। मुकुंद माधव प्रभु हंस रहे हैं, मैं नहीं कहूं ज्यादा काउंसिल मेंबर ही नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा जेट लैग। तो यदि किसी राज्य में बहुत ज्यादा रहेंगे तो प्रजा कभी सुखी नहीं हो सकती है, राज्य में एक ही राजा होना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि मैं अकेला हूं, इतनी गोपियां हैं मेरी राजा, तो हमको अपना रक्षा करना चाहिए। तस्य अंतरहित हिते इति, अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने किल निसंदेह सो अपि अंतरधते माधव। देखिए इसके बाद अध्याय 30 शुरू हो रहा है। अध्याय 30 का पहला श्लोक निकालो। पढ़ो पढ़ो। पढ़ो एक आदमी पढ़ो। अरे श्लोक पढ़ो, ट्रांसलेशन दबा में पढ़ना। हाँ, अतः अंतरहिते, मैं यही शब्द कहना चाहूं, अंतरहिते। भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए, जैसा कि हम लोग सुन, भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान नहीं भगवान हुए, कहा हूं अंतरहिते, भगवान उनके हृदय में चले गए। मैं उदाहरण दिया कि जब दर्शन करते हैं तो बाहर से कितना अच्छा लगता है, लेकिन भगवान चाहते थे अंदर और बाहर दोनों एक समान गोपियों में हो जाए। बाहर तो गोपियां प्यार करते हैं कृष्ण से, लेकिन अंदर से प्यार करें। इसलिए भगवान अंतरहिते, भगवान अंतरहित हो गए, उन गोपियों के हृदय में प्रवेश किए। उसके बाद जब गोपियों के हृदय में प्रवेश कर गए तो भगवान जैसे हैं, ये गोपियां उनके अनुसार विभिन्न प्रकार के लीला करने लगे। जैसे आप लोग भूत जानते हैं, भूत का नाम सुने हैं ना, घोष हंटेड व्यक्ति को जानते हैं, जिसको भूत पकड़ लेता है किसी को, तो आदमी तो बेचारा अच्छा सज्जन व्यक्ति था, लेकिन जब भूत पकड़ लेगा तो कैसा एक्ट करेगा, अरे हुकार भरो ना, भूत जैसा करेगा ना, वो बता सज्जन आदमी है, लेकिन भूत पकड़ लिया तब तो भूत के समान। तो वैसे ही गोपियों के हृदय भगवान चले गए तो भूत पकड़ लिया गोपियों को, कौन भूत पकड़ा, कृष्ण पे भूत, अंतर ही थे, अब अंदर चले गए तो इनको भूत पकड़ लिया, तो कैसा एक्ट करेगी ये लोग कृष्ण के समान। तो कोई पुतना बन गया, कोई अक्टासुर बन गया, बक्टासुर बन गया, क्या क्या जो भी जितनी भगवान की जितनी लीलाएं थी, यानी यानी है गीतानी तदबालक चरितानी, मैया भी वैसे ही कर रही थी। तो वैसे ही भगवान ये 30वां अध्याय में वर्णन किया गया है कि लोग पागल हो गए, कृष्ण भी भूत, अंतर हिते शब्द जो है वह प्रमाणित करता है कि कृष्ण उनके हृदय के अंदर प्रवेश किए और अंतरहित होकर के अब गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी। अब ढूंढ रही थी, ढूंढ रही थी, ढूंढ रही थी। तो ये 30वां अध्याय में अलग जब ढूंढ रही थी विभिन्न लीलाओं को तो दिखाई नहीं पड़ा, कृष्ण कहीं मिले नहीं। जब वे लोग थक गई ढूंढते ढूंढते, त्रिशे विरह संतप्त गोपी भी कृष्ण मार्गणम उन्मत्तवत नियतम भ्रमंती इव बने बने। इस 30वां अध्याय है जिसमें वर्णन किया गया कि ये गोपियां कृष्णमयी होकर के वनमन में भटक रही थी उस रात्रि को और कृष्ण को ढूंढ रही थी। और जब कृष्ण नहीं मिले उन गोपियों से तो फिर कुछ आगे गई तो देखी चार पैर का
छाप देखी। अब एक गोपियां कृष्ण का वर्णन कर रही थी, अब एक कई एक प्रकार की, भगवान शिव भी इसी में है। शरद पूर्णिमा का वर्णन कभी होना चाहिए कि शरद पूर्णिमा क्या है। शरद पूर्णिमा के बहुत से महत्व, एक ये भी महत्व है कि उस दिन भगवान शिव गोपी बने हुए थे, इस रास में भाग लिए थे। दंडकारण्य के ऋषि लोग थे, तो जिनका यह स्वभाव था कृष्ण उन पर वैसा ही कार्य किए। तो कोई गोपियां जो थी वह दूसरे भाव में थी, तो कृष्ण का वैसे ही वर्णन कर रही थी। और जब जो वो चार पैर देखे, तो चार पैर देखते ही अलग अलग गोपियां अलग अलग बात करने लगे। कुछ गोपी में द्वेष भी आया, तो कही करे कोई स्पेशल गोपी लगती है, क्योंकि पहले कृष्ण के चरणों को देखा, फिर राधा रानी के चरणों को देखा। राधा रानी के चरणों को देखते ही ललिता और विशाखा समझ गई कि एक किसका चरण है, वो लोग नहीं समझ पाई। तो उन लोगों ने कटाक्ष करते हुए कहा कोई जरूर स्पेशल होगी जिसके जिसको लेकर के कृष्ण चले गए। तो ललिता से रहा नहीं गया, कृष्ण का बदनाम हो रहा था। तो ललिता सखी का श्लोक संख्या 28 और 29 तीसवां अध्याय का ये बोला गया जो श्लोक है, ललिता और विशाखा का बोला गया श्लोक है। तो फेमस श्लोक है, अनयाराधिता नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद। अब इसके पहले ही ललिता जी कहती है, देखो कृष्ण वह गोपी उनको लेकर नहीं गई है। स्त्रियों का प्राय स्त्रियों से ज्यादा द्वेष होता है, ऐसा जब लॉ अफेयर्स हो तो पुरुषों का नहीं, स्त्रियों का, स्त्रियों से। तो गोपी जरूर कुछ की होगी जो कृष्ण को लेकर के चली गई, हमारे श्याम सुंदर को हम लोगों से लेकर के चली गई। तब ललिता जी कहती हैं, देखो इसमें नीताय शब्द नहीं आया हुआ है, इसमें आया हुआ है याताय। श्लोक संख्या 27 में जाओ तो याताय शब्द आया हुआ है। याताय का मतलब कि ले करके आए, बुलाए, और उसका पूरा वर्णन की गई है, पूरा वर्णन किया गया है कि ले करके आए। इसलिए अपना जो केहुनी था उस गोपी के कंधे पर रखे थे। यदि वह गोपी बुलाई होती तो वह श्रेष्ठ होती, लेकिन ए ले करके आए, तो गोपी नहीं उनको लेकर के आई बल्कि ए लेकर के आए। तो गौड़ जो हुआ, जो सॉरी मुख्य जो हुआ वो है इसमें श्रीमती राधा रानी। और कृष्ण क्यों उनको ही लेकर गए, हम लोगों को क्यों नहीं लेकर गए, हम लोग भी यहां पर हैं। तो कहते हैं ऑर्डिनरी गोपी नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं गोपी है, अनयाराधितानूनम भगवान हरि ईश्वर, ये हैं श्रीमती राधिका। राधा रानी को कृष्ण लेकर गए, कैसी है, अनयाराधिता नूनम, निश्चित रूप से यह आराधना करने में सर्वश्रेष्ठ है। अनयाराधिता नूनम भगवान हरि ईश्वर, ये ऐसी आराधना करती है, ऐसी आराधना करती है कि इसका आराधना ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों करते हैं, भगवान हरि ईश्वर। भगवान मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब शिव जी, और ईश्वर मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जिसका उदार पूजा करते हैं, यह वह गोपी है, अनया राधितो नूनम। तो एक तो यह अर्थ हुआ, दूसरा यह गोपी जरूर कुछ स्पेशल है, नहीं यदि स्पेशल होती तो जो भगवान हैं षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, वो भगवान इसको अपने साथ लेकर गए, उनमें किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी जरूर है। वो हरि हैं, सबके दुख को हरने वाले हैं, लेकिन आज वो स्वयं दुखी हैं जो इस गोपी को ले गए। वे ईश्वर हैं, सबको कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन आज वे इस गोपी के कंट्रोल में हैं। तो ये ऑर्डिनरी गोपी नहीं है, इसका इसको तुम गाली मत दो, तुम डुसडा मत बोलो। यन्नु बिहाय गोविंद, जो गोविंद हैं, सबके इंद्रियों को तृप्त करने वाले, आज उनकी इंद्रियां तृप्त नहीं है, इसी के चाहिए अन्नु बिहाय गोविंद। अरे हम सबको छोड़ करके क्यों नहीं मानती हो कि हमको छोड़ करके चले गए इस गोपी के साथ में, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट गोपी है। एनीवे मैं इन श्लोकों पर वर्णन नहीं करूंगा, नहीं तो एक घंटा तो उसमें लगेगा कम से कम। तब ये 30वां अध्याय है, और जब पूरा रात वो लोग खोज रहे थे, जब कृष्ण नहीं मिले, तब स्त्रियों का अंतिम अस्त्र क्या है, रोना। तो वो 31वां अध्याय है, जब लगी रोने। भगवान सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन भक्तों का रोना नहीं सह सकते। कोई क्यों रोता है, जब दुख होता है, जब दुख होता है, गोपियों को दुख था इसलिए रो रही थी। श्रीपादजी गोस्वामी कहते हैं कृष्ण का जो हृदय है वो बिल्कुल कोमल है। कैसा कोमल है, मक्खन के समान। उनका हृदय हनुमान जी कैसा है, कृष्ण का, मक्खन के समान कोमल है। और जो भक्त जो रोता है उसमें ताप है, ताप है, दुख है, तभी तो रोता है ना, उसमें ताप है, भक्त में ताप है, और कृष्ण का हृदय मक्खन के समान है। तो मक्खन यदि ताप के सामने जाए या ताप मक्खन के सामने आए तब क्या होगा, पिघलेगा। तो कृष्ण का हृदय पिघल जाता है, अरे हमारा भगत रो रहा है, हम लोग रो नहीं पा रहे हैं। कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, रोमांचकंप कभी होता है, नहीं होता है। तो भगवान का हृदय क्यों पिघलेगा। लेकिन फिर भी यदि हम पुकारेंगे कृष्ण को, जैसे द्रौपदी पुकारे या भक्त लोग पुकारते हैं, तो भगवान जरूर आते हैं। गोपियां रो रही थी तो भगवान का हृदय पिघल गया, और तब आ गए कृष्ण, आ गए साक्षात। अब आते ही स्त्री स्वभाव तो है ही, ये लोग चार्ज करना शुरू कर दिए कृष्ण पर कि कृष्ण आप हो कैसे। तीन प्रकार के प्रेमी होते हैं, एक प्रेम करने पर प्रेम करता है, एक प्रेम नहीं करने पर प्रेम करता है, और एक प्रेम करे या न करे उस पर असर नहीं पड़ता है। तो आप कौन से प्रेमी हो, सुना आप कथा, सुना था आप लोग ना। तो कृष्ण ने कहा कि जब गोपियों ने प्रश्न किया, कृष्ण बड़े खुश हो गए भाई तुमने प्रश्न किया। तब उसके बाद में कृष्ण रोई, बाद में कृष्ण से मिलन हुआ, और मिलन 34वें अध्याय में तब मिलन के समय प्रश्न किया गया, तो कृष्ण ने कहा कि जो प्रेम करने पर प्रेम करता है वो तो है व्यापारी, लेन देन जहां हो उसमें प्रेम नहीं होता है। जो प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है वो है वात्सल्य भाव, जैसे माँ बेटा भाग रहा है, मैया करी बेटा खा ले, प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है वो है वात्सल्य भाव। और जिस पर प्रेम करो या ना करो उसे कोई असर नहीं पड़ता है, या तो पागल है नहीं तो परमहंस है। कहते मैं तीनों में से कोई नहीं हूं, तो कौन सा हूं, भगवान उद्धव जी से कहे हैं हरि हरो, भगवान हरि और हर हैं। इसी का व्याख्या भगवान यहां पर किए हैं कि मैं क्या करता हूं, मैं उनके प्रेम को चुरा करके और अपने पास रख लेता हूं। हरि हरो, उनके दुख को मैं हर लेता हूं और सुख को चुरा करके अपने पास ले लेता हूं। ये छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको चॉकलेट दे दो और बाद में उसे ले करके घुमा करके पॉकेट में रखो, और आप चलो कहेगा डैडी चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दे दो, पीछे दौड़ता रहेगा ना, क्योंकि जानता है कि उनके पास चॉकलेट पॉकेट में रखे हैं, वो मांगता रहेगा। तो भगवान कहते हैं मैं वैसा ही प्रेमी,
मैं चुरा लेता हूं अपने पास तक, तुम हमारे पीछे दौड़ते रहो। हरी हरो। तो भगवान कहे कि मैं ऐसा प्रेम हूं। उसके बाद में महारस प्रारंभ हुआ। हम एक गोपी गीत में ही है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, जब रो रही थी, एक गीत है, गोपियों गा रही थी, रो रही थी उस समय। उसके बाद भगवान जब मिले और बाद में रास हुआ, और रास के बाद में भगवान दो असुरों का उद्धार किए। तदोपरांत भगवान विभिन्न प्रकार का लीला कर रहे थे। अब एक गोपियां ब्रज की तप्त थी, जब कृष्ण जा रहे थे गोचारण करने के लिए, तो दिन भर एक गोपियां दुख को दूर करने के लिए कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का चर्चा करती थी, और इस प्रकार से उनका दुख दूर होता था। हम लोग भी उसी संप्रदाय में, गोपी भर्तु पदकमलयो दासानु दासानु दास। हम लोगों को भी यदि अपने दुखों को दूर करना है, तो हम लोगों को नित्य निरंतर 24 आवर ए डे कृष्ण चर्चा करना चाहिए, कृष्ण नाम लेना चाहिए, कृष्ण के लीलाओं का चर्चा करना चाहिए, तब हम लोग का दुख दूर होगा। लेकिन माया का हम दिन भर चर्चा करेंगे, तो माया तो दुख देती ही है। कृष्ण बोलिया से जीव भोग वांछा करे, निकटस्ते माया तार झापटिया धरे। तो माया धोबिया पाट लगाती है, ठीक है, धोबिया पाट कपड़ा धोने के लिए। तो माया धोबिया पाट लगा करके हम लोगों को सब, इसलिए हम लोग को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां पर जो ये श्लोक है, हनुमान जी समझ रहे हैं ना, धोबिया पाट आप भी लगता है धोबिया पाट में पड़ गए हो। तो माया का चर्चा करेंगे तो दुखी रहेंगे, कृष्ण का चर्चा करेंगे सुखी रहेंगे। ये अंतिम श्लोक जो है उसमें कहते हैं, मोचयन ब्रजगवा दीन तापम। दीन तापम, दिन भर का जो ताप था, कृष्ण के विरह का जो ताप था, कितना सुंदर वर्णन किया गया है। कृष्ण आ रहे हैं और ये गोपियां कृष्ण के एक एक अंगों का दर्शन कर रही है। हम लोग ये दामोदर अष्टकम जो है, हम लोग आरती करते हैं, आरती थोड़े है ये, तो कृष्ण के ब्रजवासी लोग, जब वो वृक्ष टूट गया था, दोनों वृक्ष टूट गए थे, तो उस समय लाइट और टॉर्च लाइट था नहीं, तो गांव से ब्रजवासी लोग ये लैंप लेकर के आ रहे थे, देखने के लिए कि कृष्ण का शरीर कहीं अंग भंग तो नहीं हुआ है, निहारने के लिए, न कि आरती करने के लिए, वो देखने के लिए। भाव यही होना चाहिए, रथ यात्रा में रथ खींचते हैं तो भाव होता है कि हम चैतन्य महाप्रभु का भाव, कि हम वृंदावन ले जा रहे हैं कृष्ण को, बलराम को। तो वैसे ही ये आरती करने का नहीं है, निहारने का है, देखने का है, कहीं अंग भंग तो नहीं हुआ है भगवान का। तो यही है यही चीज है, मोचयन ब्रज गवाम दीनताप। विश्वनाथ चक्रसार कहते हैं, गवाम मतलब बहुवचन है इंद्रिया, गो मतलब इंद्रिया, गवाम मतलब इंद्रिया, जितनी इंद्रिया है। तो ये दो श्लोक जो है, ये समस्त इंद्रियों के ताप को हरण करते हैं, आंख के ताप को हरण करते हैं, भगवान का देख दर्शन कर करके भगवान आए हैं, कैसे हैं। मद विघूर्ण त्रिलोचनम ईशन मादनम सहृदाम बनमाली, भगवान के सौंदर्य का देख रही हैं। भगवान बांसुरी बजाते, बरहा पीडम बटोर नटर कर्णयो कर्णिकारम, जब भगवान आते हैं तो बांसुरी बजाते हुए आते हैं, नाचते हुए आते हैं। तो जितनी भी इनकी इंद्रियां हैं वो भगवान में लगी हुई हैं। मोचयन ब्रज गवाम दीन ताप, दीन तापम, दिन भर का जो ताप था, जो थकावट था, उस थकावट को दूर करती है ये ब्रज की ब्रजंगनाएं, कैसे कृष्ण का दर्शन कर करके। पहले जमाने में लोग जानते थे कैसे थकावट दूर करना चाहिए, सुबह सुबह हरि कथा कीर्तन करते थे और शाम को बैठ कर करके भागवत कथा सुनते थे। प्रभुपाद जी बहुत एम्फेसाइज किए कि हम लोग को सुबह भागवतम सुनना चाहिए और शाम को भगवत गीता सुननी चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए कि पहले जमाने में उनके पिताजी वगैरह जब थे तो वे लोग कथा सुनते थे और घर आते आते रास्ते में वार्ता करते आते होते थे कि क्या कथा हुआ, क्या इतना अच्छा था, इसमें ये था ये था। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, दीन तापम, दीन भर का जो ताप है दुख है तब दूर होगा जब कृष्ण चर्चा हम लोग करें तब। तो इस अध्याय इस श्लोक से इस शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को कि सोने से पहले कम से कम कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का चिंतन करते हुए और सो जाए, कृष्ण का नाम लेते हुए सो जाए और दिन भर कृष्ण चर्चा करें तो मजा आ जाएगा। एनीवे एक मैं डेढ़ महीना ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन अमेरिका रहा तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी थोड़ा बताइएगा कि वो 3 साल के बाद गया कोरोना के बाद में तो क्या क्या हुआ, तो थोड़ा समय और लूंगा क्योंकि जो कथा कहते हैं उनका ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है थोड़ा बोलना, 5-10 मिनट में क्या बोलेंगे, ये सेंस था बोल देना चाहिए। एनीवे तो बात हो रही थी कि क्या अमेरिका में है, अमेरिका में तो बहुत कुछ है सुख सुविधा ये सब बहुत प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को दुख ना हो, बहुत फर्स्ट क्लास का रोड है, बहुत सुख सुविधा है, लेकिन जितना सुख सुविधा है उसका डबल दुख है। सुख सांसारिक जो सुख है उसके पीछे पड़ेंगे तो दुख मल्टीप्लाई होता है, और कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन के आनंद में रहेंगे तो वो जो दुख है उस समय का वो तो खत्म हो ही जाएगा, वो आने वाला है वो भी खत्म हो जाएगा, पीछे का है वो भी खत्म हो जाएगा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, सब कर्म फल खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए भक्तों को निरंतर चाहिए कृष्ण कथा में लगे रहना। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा कि वहां पर आज 3 मंदिर बन रहे हैं और इस बार 2 मंदिर बनाने का और प्रस्ताव चल रहा है, तो एज ए ग्लोबल मिनिस्टर ऑफ जीबीसी ग्लोबल मिनिस्टर ऑफ फंड डेवलपमेंट तो मैं सहयोग कर रहा हूं 5 मंदिरों को बनाने में। तो पहले मैं गया यहां से बाल्टीमोर और वहां अपने बॉम्बे के ही बहुत भक्त लोग हैं, ये पांडे माता जी का बेटा श्याम पांडे वहां पर है, उसके बाद अदक्षज प्रभु हैं और सब भक्त लोग हैं। वहां पर भक्तों में बड़ी उत्कंठा थी कथा सुनने के लिए, तो राधाष्टमी के समय मैं वहां था और जो प्रेसिडेंट है नील माधव प्रभु बड़े अच्छे भक्त हैं वो भी, तो क्या प्रभु जी आप वो भक्त लोग मेरा बात नहीं सुनते हैं कभी कभी, वो डॉक्टर हैं बाहर रहते हैं, वहां पर अमेरिका में फुल टाइम डिवोटी बड़े कम है, कांग्रेगेशन लोग हैं, मंदिर में कभी कभी तो मंगल आरती में अकेला रहता था, लेकिन कोई बात कभी कभी 4-5 लोग जो रहते थे बेचारे थक जाते हैं दिन भर काम करते हैं नहीं आते बाहर रहते हैं, तो बोले प्रभु जी जो मंदिर में रहते हैं नहीं आते हैं और उसके लिए कभी कभी मन मुंडाओ तो क्या करना चाहिए। तो मैं कहा कि वहां पर टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है, प्रेसिडेंट और भक्तों के बीच में जो दूरी है उसको मिटाना बहुत जरूरी है। तो टीम बिल्डिंग का मतलब क्या, तो मैं बताया था कानपुर हम लोग करते हैं कि कर सेवा करते हैं हफ्ता में एक दिन, सब लोग चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कोई हो साथ में मिलकर, तो वहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं है। तलासरी में हम लोग वो वॉलीबॉल खेलते हैं थोड़ा वो टीम बिल्डिंग करने के लिए, तो टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। तो हम लोग गए वहां एक ओशन सिटी है वहां पर, तो हम लोग वहां थोड़ा गए हरिनाम किए प्रसाद वितरण किए और बाद में समुद्र बड़ा सुंदर है और वहां पर खूब तैरे वेरे थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन कह सकते हो, लेकिन टीम बिल्डिंग था सब लोग। तो मैं कहा कि वन से वाइल टीम बिल्डिंग करना चाहिए तो फिर आप देखना भक्तों में कैसे प्रेम बना रहेगा। 3-4 प्रोग्राम भी हुआ, मैं देखा कि लोग सुनना चाहते हैं, सुनाने वालों की कमी है, तो मैं तो इनकरेज करूंगा कि जो सुनाने के लिए विदेश जाना चाहता है वो जा सकता है, सुनाने के लिए और किसी काम के लिए सुनना चाहते हैं तो सुनाइए आप लोग जाकर के हरि कथा, वो लोग सुनना चाहते हैं। तो करीब 4-5 दिन वहां था, उसके बाद मैं न्यू जर्सी में एक मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन
शायद नेक्स्ट ईयर हो जाए, तो वहां पर भी मैं मोस्टली हमारे वहां भी कमेटी बनाया हूं, तो हमारा जो बेटा है उसको मैं बुलाया, वो लिटिल रॉक हमारा छोटा भाई रहता है उसका बेटा, तो उसको बुलाया है, क्योंकि वहां मैं तो ड्राइविंग कर नहीं सकता हूँ, करूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, यू नो वहां हम इधर काटते हैं वहां पर थोड़ा दूर काटना पड़ता है, लेफ्ट वाला है ना, एक बार मैं ट्राई किया तो मैं इधर ही लगा दिया, अरे उधर से गाड़ी आ गया, होना चाहिए उस साइड में, मैं कहा कि अपना बस का बात नहीं है, और जो बड़ा बड़ा ट्रक है ना वो 1 किलोमीटर यहां से वहां तक ट्रक है, और वहां का गाड़ी कहीं बीच में आया था, गाड़ी ऐसे जाता है, एक बार मैं सैन फ्रांसिस्को में चला रहा था और वो ऐसे चल रहा था, लगता था कि अब मेरा मन कर रहा था कि ट्रक में चला जाऊं, ट्रक में चला जाऊं, वो उसमें फोर्स था ना, खींच रहा था, तो एनीवे ब्रजमोहन आया था, तो हम गए, हमारे जितने कमेटी मेंबर लोग थे उन लोगों से मिला, मोस्टली न्यू जर्सी में ही फंड रेजिंग का बेसिकली काम किया, और या वी रेज अराउंड $200,000, मतलब 1.5 करोड़ कलेक्ट किए उस समय, और उसी क्रम में हमारे एक कमेटी मेंबर हैं हरीश भाई, तो उनका नाम है वहां पर शॉर्ट नाम है हरीशा, हरीशा हरीशा बेचारे लगे रोने, हमें बड़े अच्छे हैं वहां के, बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर हैं, और मेरा उनको इंट्रोडक्शन हुआ था, ये राजेश राकेश झुंझुनवाला जो बेचारे मर गए ना, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे, तो बहुत बड़े स्टॉक ब्रोकर है, तो बड़े रोने लगे हमसे मिल करके, बहुत 3 साल के बाद मिले थे, पकड़ लिए, लगे रोने, कहे प्रभु जी हम तो भारत से आए हैं, हम तो भारत से आए हैं, तो अपना भारत में वो सभ्यता संस्कृति अपनी है हम तो जानते हैं, हमारे जो बच्चे थे उसको मैं भारत लेकर गया तो वो भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, लेकिन जो ग्रैंड चिल्ड्रेन है वो तो यहाँ का पढ़ते हैं, सब कुछ यहाँ है, मैं देख रहा हूं हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, और आप ही लोग कुछ कर सकते हो, तो एक चैलेंज था, तो मैं हमारे एक मित्र हैं मदन गोपाल प्रभु, मैं उनसे शेयर किया क्या करना चाहिए, मैं उनको तो बता दिया उस समय कि पहला काम आप कीजिए कि अपने घर में अपना लोकल भाषा बोलिए, अंग्रेजी मत बोलिए, क्योंकि भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है, मैं रशिया गया था तो वहां पर अंग्रेजी जानते हैं, ऐसा होता है अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, वो रशियन बोलेंगे, जर्मनी में जाओ आप एयरपोर्ट पर वो जर्मन लैंग्वेज में बोलेंगे, चाइना में जाओ चाइनीज बोलेंगे, ये इंडिया ही है कि जहां पर सब भाषा पर चलते हैं, और अमेरिका यूनाइटेड नेशन है तो अंग्रेजी सब जगह, तो मैं कहा पहला काम करो कि अपने घर में भाषा बोलना शुरू करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए प्रश्न है, तो मदन गोपाल प्रभु को मैं कहकर आया हूं कि कुछ लिखें, और मेरा एक अनुभव है, कल ही मैं गुप्ता माता जी से शेयर कर रहा था और यही बात मेरे दिमाग पर है, तो माता जी ने कहा कि प्रभु जी ये बताइए कि वे लोग जो घर में बनता है बच्चों को वही खिलाएं, कहते जब हम लोग थे तो हम जब बड़े हो रहे थे तो घर में जो बना था वही खाना था, हम नहीं खाते, माँ बाप झगड़ा मारते थे तुम खाओ यही खाना है, आजकल तो घर में बना है वो नहीं, उनको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो बाप माँ व्यवस्था करते हैं, मैकडोनल्ड से मंगाते हैं कहाँ से मंगाते हैं, तो वो बात सही है, जो जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा, घर का खाना एक बात है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोगों के पास कुछ एक्सपीरियंस है कुछ कि उन बच्चों क्या किया जा सके, तो न्यू जर्सी में मुझे यह चैलेंज मिला और इसके लिए मैं कार्यरत हूं, वहां अच्छा मंदिर बन रहा है, भक्त लोग वहां भी नहीं है, तो पुजारी लोग हैं, कंग्रीगेशन मोस्टली, उसके बाद मैं गया कोलंबस ओहायो, जहां प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कोलंबस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिए थे और सब बच्चे लोग नाच रहे थे, और एक बहुत पॉप गायक थे वो आए थे, कौन कौन बिल है, हाँ एलेंगिसवर्ग नाम भी रहता है, तो एलेंगिसवर्ग वो गाए थे और प्रभुपाद जी गा रहे थे, तो सब लोग नाच रहे थे, तो हम गए उस तीर्थस्थली का दर्शन करने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी किया भाई, प्रभुपाद जी गए थे वहां पर, और उसके बाद में वहां पर 50 एकड़ जमीन प्राप्त हुआ है, तो वहां के जो प्रेसिडेंट है, तो वही बात हुआ कैसे उसे शुरू किया जाए,
तो वहां भी हमने कमेटी बनाया, क्योंकि अपना तो काम वही है। ढेंका यदि स्वर्ग में भी जाएगा तो धाने कुटेगा, तो वैसे ही हम अपना काम तो वही फंड रेजिंग का है। मैंने कहा बड़ा फंड रेजिंग का ना कमेटी बनाओ, तो इस पर कमेटी बना करके आया वहां पर भी। उसके बाद बाल्टीमोर गया, वाशिंगटन में भी नया मंदिर बन रहा है, 2 साल लगेगा, तो बड़ा अच्छा वाशिंगटन पुराना मंदिर राधा मदन मोहन देव है। उसके बाद चिकागो गया, और चिकागो में भी नेपरविल है, पूरे इंडियन लोग है, तो वहां भी मंदिर बन रहा है और वहां भी कमेटी में बनाया हूं, तो इस साल अक्षय तृतीया को उसका उद्घाटन है। तो वहां कई एक प्रोग्राम हुआ, बेसिकली कमेटी में घन प्रोग्राम हुआ, तो वहां किया। उसके बाद मैं गया जहां मेरा भाई रहता है लिटिल रॉक, वहां रथ यात्रा हुआ, और वेलस्पन अपना जो कंपनी है उसके करीब 10,000 वर्कर हैं इंडियन वेलस्पन। लिटिल रॉक जो है वहां पर करीब 25-30,000 इंडियन होंगे, ज्यादा नहीं, इस्कान का कोई ये नहीं है, मेरा भाई है वही प्रचार करता है। तो वेलस्पन कंपनी के लिए प्रोग्राम में किया एक बार फैक्ट्री में, और वहां मंदिर है बहुत सुंदर मंदिर राधा माधव का, वहां किया। उसके बाद मैं गया डालस, और डालस में भी कई एक प्रोग्राम किया, दामोदर लीला करीब 7 प्रोग्राम हुआ, तो 7 दिन तक कथा, 4 दिन था लेकिन 7 प्रोग्राम हुआ। ये प्रमाणित करता है कि लोग सुनना चाहते हैं। और मैं वर्किंग डे गया था, फिर भी 6 बजे से 8 बजे डेली क्लास होता था, और कभी कभी तो लोग लंच के लिए अपने घर बुलाते थे, ब्रेकफास्ट के लिए, तो लोग सुनना चाहते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और इस बार मुझे बहुत प्यार मिला सब लोगों से। डालस था 4 दिन, उसके बाद मैं गया न्यू ऑर्लियंस, वहां पर उसको मिनी मायापुर बोलते हैं, तो वहां बहुत माया, यहाँ के डिवोटी हैं, बॉम्बे के भी बहुत लोग हैं, वो चतुर्भुज प्रभु का बेटा है रामरतन वहां है, और लोग हैं, तो वहां पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद हम गए न्यू तालावन, जहाँ प्रभुपाद जी आप लोग देखे होंगे स्वयं बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो न्यू तालावन में भी एक मंदिर बना रहे हैं वहां पर, तो मंदिर ऑलमोस्ट बन चुका है, हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन आपसे जो बताया 3 यहाँ पर, वाशिंगटन, न्यू पार्सीपेन न्यू जर्सी, चिकागो नेपरविल, ये 3 जगह पर मेरा इन्वॉल्वमेंट है, और शुरू किया अभी शुरू करेंगे कोलंबस, वहां भी मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बाद में हम वहां से गए अटलांटा, सबसे अच्छा अटलांटा मिला। वहां पर एक माता जी हैं गीता माता जी, और उनके हस्बैंड हैं गीत गोविंद प्रभु, 1980s में उल बांद्रा रहते थे, श्रीधर स्वामी उनके घर पर जाते थे और प्रवचन करने के लिए फोन के ऊपर, उसका नाम है, किसी को याद है उस समय का कोई डिबोटी है, से समझते थे गीत गोविंद प्रभु और गीता माता जी, और गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं। गीता माता जी बहुत अच्छी प्रचारक हैं, बहुत अच्छी प्रचारक हैं, दे आर द फाउंडर ऑफ भीष्म डिपार्टमेंट। भीष्म डिपार्टमेंट जो है श्रीधर स्वामी तो शुरू किए, लेकिन काम करने वाले ब्रेन जो था गीत गोविंद प्रभु का था, गीत गोविंद प्रभु और गीता माता जी शुरू किए थे, शुरू हुआ था इस ऑफिस से, अकाउंट ऑफिस से, छोटा जगह से। और मैं उनके घर में जाता था प्रोग्राम करने के लिए, उनका एक बेटा था विक्रम, छोटा था, मैं अपने माला से उसको करता, अभी वो 45 साल का हो गया है, 12 साल का लड़का था, तो घर पर गया था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उसके यहाँ 60 लोग काम करते हैं, आईटी वाला है, पैलेस में रहता है, अकेला बेटा है, अकेला है। तो वो याद कर रहा था पुराने दिनों का, कैसे आप हमको पीठ पे मारते थे, माला से मारते थे, और पूछते थे जप किया कि नहीं, तो प्रभु जी उस समय जितना जब बड़ा उतना ही अभी भी करता हूं, तो 2 और उसे बढ़वा कर गया इस बार, मैं क्या दोबारा और तुम करो, तुम बड़ा हो गया है, एनीवे, बट ही अर्न्स वेरी गुड मनी। और गीता माता जी बहुत अच्छी प्रचारक है, तो वहां भी 4-3 दिन था, तो दामोदर अष्टकम वहां भी किया, और दिन में अन्य लोगों से मिलता रहा। फिर उसके बाद वो बेदसारा प्रभु वहां के प्रेसिडेंट है, तो वहां भी प्रभुपाद जी शुरू किए वहां का मंदिर, जिसे न्यू पानी हाटी कहा जाता है, और वहां भी बहुत सुंदर मदन मोहन जी का श्री विग्रह प्रभुपाद जी स्थापित किए थे, तो वहां भी नया मंदिर बनाने का प्रयास है। और वहां भक्त लोग बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा अटलांटा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसके बाद फिर बाल्टीमोर आया, उसके बाद फिर इंडिया आया। तो मेरा दो या तीन चीज देखने को मिला, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है। एंड बहुत सी कहानियां हैं छोटी छोटी, लेकिन जाने पर समय ज्यादा हो जाएगा तो। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन हरि कथा सुनना चाहते हैं, वो मोटिवेशनल टॉक अब नहीं सुनना चाहते, थक गए, चाहे गूगल सर्च करके, वो नहीं, वो प्योर हरि कथा सुन, क्योंकि कांग्रेगेशन बेसिकली है, वो हरि कथा सुनना चाहते हैं। और या और दूसरा बात, जो कमेटी वाले हैं बेचारे, वे परेशान है कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन क्या होगा, स्वाभाविक है इंडियन लोग हैं। तो ये दो चीज हमको देखने को मिला। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? यस।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि हम जैसे जर्मनी में जाते हैं तो जर्मनी वाले भले अंग्रेजी जानते हैं लेकिन जर्मन बोलते हैं, रसिया वाले रशियन बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेजी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं हिंदी और अपना लोकल भाषा छोड़ के, तो यहाँ पे ये परिवर्तन करना क्यों जरूरी नहीं है?
इसीलिए मैं हिंदी में क्लास देता हूँ।
नहीं, आप देते हैं प्रभु जी,
मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, पूरे अमेरिका अंग्रेजी में बोला, लेकिन ये दामोदर कथा था मैं हिंदी में बोला सब जगह। मैं कहा तुमको अच्छा लगे तो इन्हें आनंद कर, सबको अच्छा लगा। लेकिन अब शिकागो मंदिर में, वाशिंगटन मंदिर में तो कुछ अंग्रेजी वाले हैं, तो अंग्रेजी में देना
पड़ेगा। जहां पे प्रभु जी अंग्रेजी वाले हैं ठीक है, लेकिन सब हिंदी समझते हैं लेकिन हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो उसका क्या मतलब? हमको आज तक समझ में नहीं आया चीज।
वेल, हम लोगों का अभी भी थोड़ा सभ्यता है, अभी अमेरिकन सभ्यता आ जाएगा, जब अंग्रेजी बोलेंगे तो आ जाएगा धीरे धीरे, तो संभालो, हिंदी में कथा करो। अच्छा,
हरे कृष्ण।
हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कृष्ण कथा होनी चाहिए। कृष्ण कथा की आज आवश्यकता है। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में ही कृष्ण कथा की है। अब बाद में बात करेंगे।
हरे कृष्ण। ये विघूर्णित लोचन शब्द आया है तो उसका मतलब क्या है? कि और दूसरा है कि वो पांडु भी शब्द आया है जो सफेद, तो ये दो शब्द समझे नहीं मुझे।
हाँ, क्या बोला आपने?
ये मद विघूर्णित लोचन,
हाँ,
कि उनके नयन मद भरे ऐसे, तो क्या है वो
मद? जो था यह अहंकार वाला नहीं है, प्रेम का मद, प्रेम से परिप्लावित था उनका जो चक्षु था, वो प्रेम से देख रहे थे, उन लोगों को देख रहे थे जो उनका वाट जो रहे थे कि कृष्ण कब आएंगे, तो उन पर कृपा वृष्टि कर रहे थे। अंत में आया हुआ है ना कि जिस प्रकार से मुदित वक्त्र उपगायति दुरंतम मोचयन ब्रजगवाम दीनतापम, यहाँ पर यामनी पतिरैव दिनांते, जैसे चंद्रमा जब उदित होते हैं दिन के अंत में तो कितना शीतलता प्रदान होता है, वैसे ये लोग दुख में दुखी थे और जब भगवान आ रहे थे तो भगवान की कृपा दृष्टि हो रही थी, तो एक कृपा दृष्टि के लिए कहा जाता घूणित मद विभूर्णित लोचनम। मद मतलब कृपा का मद, कृपा के मद से भगवान अपने आंखों को चारों तरफ घुमा रहे थे, उन लोगों को दर्शन दे रहे थे या उनको देख रहे थे, भगवान का दृष्टिपात कर रहे थे। तो एक तो यह हुआ। और बदर पांडु बदनो मृदुगुंडम, तो ये तो भगवान के मुख कमल का वर्णन किया गया है कि जब ये जो धूल पड़े हुए थे ना, जो भगवान गोचरा लाते रहते आ रहे थे तो गोधूल का जो धूल था वो धूल का वर्णन किया गया कि धूल कैसा लग रहा था। ये बदर पांडु बदनो, भगवान के शरीर पर जो धूल था वह श्वेत धूल ब्रज धूली पड़ी हुई थी, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन। तो गोपियां इस रूप में देखी कि कृष्ण का जो शरीर था धूल धूसरित था। धूल जो होता है सफेद होता है प्राय, तो भगवान का शरीर उससे ढका हुआ था। गौवें, भगवान हमेशा आगे रहते थे। गाय चराने का एक तरीका है, जो चरवाहे होते हैं वे पीछे नहीं रहते हैं, आगे रहते हैं, और गौवें पीछे से आती है। और जब धूल उड़ता है तो धूल भी कृष्ण का दर्शन करना चाहता था। पीछे होते तब तक धूल लगता, लेकिन आगे धूल लगा हुआ है, मतलब धूल ऐसे जाकर लगा हुआ है। इसीलिए कहा गया है वंदे नंद ब्रजस्त्रिणाम पाद रेणु अभिक्षण हरि कथो दय गीतम पुनाति भुवनम त्रयम। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, नंद बाबा के ब्रज के उन स्त्रियों का प्रणाम को प्रणाम है। पाद रेणु अभिक्षण स, जो नित्य निरंतर भगवान के चरण कमलों का जो धूल था उसको प्राप्त करना चाहते, अभिक्षण स लेना चाहती थी। यासा हरि कथोदयम गीतम, जहां पर भी इसका गान हो, भगवान के इन लीलाओं का गात है। पुनाति भुवनम त्रय, तीनों भुवन को पवित्र करने वाले एक गोधूली का धूल का दर्शन करेगा, जो करेगा तो इस कथाओं का जो वर्णन होगा बद्र पांडु बदनो मृदुगंडम। ये आप श्लोक देखोगे, ये गीत है श्लोक, ये श्लोक के रूप में नहीं, इसको गा सकते हैं, ये गाया हुआ है। कहते मोचयन ब्रजगवाम तीन तापम, ये दुख को दूर कर रहा था। तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन, यस ओके हाँ, हनुमान जी का प्रकट होगा बाद में।
हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। प्रभु लाइक यू आपने बताया था बीच में कि लाइक ब्रजवासी जो थे वो इस तरीके से बोल रहे थे कि लाइक कृष्णा 12 साल के हो गए, गोपीज 12 साल की हो गई है। प्रभु हम सुनते हैं कि लाइक द्वारका के अंदर तो भले डेमी गॉड्स एंड ऋषि मुनि आ गए थे, बट इन वृंदावन देयर आर प्योर डिवोटीज ओनली। तो फिर यहाँ पे दिस क्रिटिसाइजेशन एंड दिस जो ब्रजवासी इस तरीके से बोल रहे थे वैसा कैसे हो सकता?
वो व्यंगात्मक था, वो व्यंग में, उसमें भी कृष्ण का गुणानुवाद हुआ है, राधा रानी का गुणानुवाद हुआ है। जो व्यंग था वो भी राधा कृष्ण का ही था, वो प्रतिकूल भाव से नहीं था, अनुकूल भाव से था, व्यंग था। गोपियों का स्तर है, कर सकती है।
It's like commenting on the situation.
एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्टली तो वो उस गोपी के सौभाग्य का वर्णन कर रहे थे, साथ में कृष्ण चले गए हैं। लेकिन आचार्य जीवन कहते हैं कि उनमें द्वेष भाव था, लेकिन वो ट्रांसडेंटल द्वेष है उसके, हम लोगों के द्वेष ऐसा नहीं, किसी के पैर को खींचने के लिए नहीं। राधा रानी के धूल का भी विशाखा जी वर्णन, चरण रेणु का, जिस चरण रेणु को ब्रह्मा शिव भी लेते हैं, वह गोपी है, ऑर्डिनरी गोपी नहीं। आगे का श्लोक में बताया गया है, जो भी शाखा संगीत द्वारा बोला गया। यस
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कथा के जो मध्य में आपने कथा बताई बागभट्ट जी की, तो उसमें जैसे बताया कि एप्रिसिएशन के ऊपर बात चल रही थी कि उनके पिताजी एप्रिसिएशन नहीं कर रहे थे, तो ये हमने भी सुना है कि पिता को अपने बेटे की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। पर प्रभु जी जैसे गुरु शिष्य में भी ये बात देखा जाता है कि एप्रिसिएशन से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है लोगों को, लेकिन अगर एकदम ही उसको बार 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 ऐसा किया तो उसमें ये ठीक है कि उसका ग्रोथ होगा?
मोटिवेशन मिलना चाहिए हरि कथा और कीर्तन से, न कि फाल्स बड़ाई से,
प्रशंसा।
प्रशंसा से मोटिवेशन मिलता है तो कुछ गड़बड़ी है। मोटिवेशन मिलना चाहिए हरि कथा से। हरि कथा में इतना मोटिवेशन है, भगवान के नाम में इतना मोटिवेशन। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी कहते हैं, जयति जयति नाम आनंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम कथमपि सुकृदम प्राणी नाम जत परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। हमारे जीवन का एकमात्र आभूषण हरि कथा और हरि नाम हो जाए तो फिर मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल टाकर की जरूरत नहीं है। हम लोगों को टेस्ट नहीं है इसलिए प्रशंसा की जरूरत होती है। टेस्ट होगा हरि कथा में तो प्रशंसा की जरूरत नहीं है। आमीन। यस, प्रशंसा हो या ना हो, जो प्रशंसा के पीछे चलता है वो हमेशा दुखी रहता है और जो हरि कथा के पीछे चलता है प्रशंसा उसके पीछे दौड़ता है। जो हरि कथा कहेगा सुनेगा उसको उसी में आनंद है तो हजार लोग प्रशंसा करने वाले मिलेंगे। प्रशंसा को आगे मत रखो, पीछे रखो, हरि नाम आगे होना चाहिए। मोटिवेशन के लिए हरि नाम आगे हो, प्रशंसा पीछे हो। हम लोग क्या करते हैं, प्रशंसा को आगे रखते हैं, हरि कथा को पीछे करते हैं। तो मतलब कि प्रशंसा हरि कथा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हरि नाम इंपॉर्टेंट है, हरि कथा इंपॉर्टेंट है कि किसी का ग्लोरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है? बताओ क्या इंपॉर्टेंट है?
हरि कथा।
बस हरि कथा करो, हरि नाम करो, प्रशंसा दासी के रूप में दौड़ेगी। सत्यम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न क्वचित सर्वे विधि निधि तस्याम किंकरम। ये सब किंकर हैं, दासियां हैं, प्रशंसा मतलब सब दासी हैं। सत्यम स्मर्तव्यम विष्णु, मोटिवेशन आएगा हरि कथा से, हरि कीर्तन से। प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ो ना, कितना मोटिवेशन आएगा। प्रशंसा क्या जरूरत है? ये तो उनको चाहिए प्रशंसा जो 10th क्लास के हैं, कंडम लोग हैं या कर्मी हैं। भक्तों को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए।
तो बस प्रभु जी इतना ही लास्ट में प्रश्न था कि हम लोग देखते हैं कि कोई अगर सेवा कर रहा है और हमने उसका कोई अप्रिसिएशन नहीं किया तो वह व्यक्ति उसको लगता है कि मुझे कुछ तो फल ही नहीं मिल रहा, मतलब मुझे कोई सम्मान नहीं, मेरा कुछ फल नहीं।
क्योंकि हम कंडीशन है, सोचते हैं। इनकरेजमेंट और प्रशंसा में अलग होता है, इनकरेजमेंट एंड ग्लोरिफिकेशन में अलग होता है। इनकरेजमेंट करना चाहिए भक्तों को। यस, इनकरेज करो डिवोटियों को, लेकिन विभिन्न तरीका है इनकरेज करने का। प्रशंसा करना एक तरीका होगा लेकिन वो उतना नहीं है। आई मीन जस्ट एक भक्त को साथ में आप बैठो, उसका हाल चाल पूछो, क्या तकलीफ है, तुम पढ़ते हो कि नहीं, साथ में कमला जप करो बैठकर करके। वो डिवोटी हमेशा याद रखेगा कि प्रभु जी आए थे, हम साथ में जप किए, हमेशा याद रखेगा हम हरि कथा किए। ये जरूरी है प्रशंसा की बजाय। 5 मिनट का प्रशंसा उतना काम नहीं करे जितना एक माला जप करना साथ में बैठकर।
धन्यवाद प्रभु जी।
राधा कृष्ण प्रभु।
मेरा प्रश्न ये है कि आप तो सारे अमेरिका घूम के आए, सभी जगह बताया।
हाँ, तुम्हारा बेटा है, मिला था गोपाल
भक्ति चारू महाराज का जो सेंटर है। जैसे कहावत है, गढ़ आला पर सिंह गेला, गढ़ आला पर सिंह गेला। आपको इंग्लिश में बताएंगे
क्या क्या?
गढ़ आला पर सिंह गेला। तो भक्ति चारू महाराज ने इतना 100 एकड़ जमीन के, हम सुना है कि 100 एकड़ जमीन मिला, वहां कुछ हो रहा है कि क्या आप लोग कर रहे क्या?
मैं वहां नहीं गया, नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। मैं डिसाइड कर लिया हूं कि अब ईस्ट कोस्ट में नहीं रहूंगा। जितने महाराज लोग सब ईस्ट कोस्ट में रहते हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, इधर रहते हैं। उधर साउथ डाउन कोई नहीं जाता है। तो मैंने निर्णय किया कि मैं डाउन जाऊंगा। शिकागो से नीचे जितने शहर हैं अपने स्कान के, ऑरलैंडो, उधर मैं जाऊंगा। अलाचवा के अलावा ऑरलैंडो जाऊंगा, डालस जाऊंगा और सब जाऊंगा। बस करेंगे कुछ। यस, हनुमान जी को दे भाई, तड़फ रहे हैं हनुमान, सुनकर जगे हैं अभी, कुछ कमेंट देंगे अभी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। 2 कमेंट है और 1 प्रश्न है, प्रश्न बाद में पूछता हूं। कमेंट पहले सुनाता हूं। जो चोर गुंडा होते हैं उनको नींद नहीं आती है, आपके प्रवचन में जो बैठे हैं वह सब सज्जन लोग हैं, कोई चिंता का विषय नहीं। पत्नी के प्रकार चार है, पति त्यागी।
ना ना ना, ना ए, ए, एक बात कहे, जो चोर गुंडा होते हैं
हाँ
उनको नींद
नहीं, नहीं आती।
तो भक्त लोग चोर हैं?
नहीं
वो चोर हैं और तो क्या चुराते हैं? कृष्ण को चुराते हैं।
अच्छा तो ठीक है, फिर
उनको फिर नींद नहीं आती है।
चलेगा।
और कृष्ण को अच्छा लगता है कोई उनको चुराता है तो। कोई चुरा तो ले।
आगे
हम लोग चुराते नहीं है, माया को चुराते हैं, माया के वस्तुओं को चुराते हैं, कृष्ण और कृष्ण संबंधित कथा को नहीं चुराते हैं। चुराने का मतलब छिपा लेना, मिनचे यही है। चोर छिपाता है ना, तो छिपा लो कृष्ण को अपने हृदय में।
जी प्रभु। पत्नियां चार प्रकार के होते हैं, पति त्यागी जो पति का त्याग करते हैं, दूसरे है पति द्रोही जो पति से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, तीसरी है पति भोगी जो पति को पति का संपत्ति का भोग करना चाहती है, और चौथी है पति सेवी जो पति की सेवा करना ही अपना जीवन सफल समझती है। प्रश्न यह है प्रभु, जब प्रभु रासलीला किए तो सब सो रहे थे, तो ब्रजवासियों को किसने बताया कि प्रभु रासलीला किए हैं?
देखिए, सुखदेव गोस्वामी त्रिकालदर्शी हैं, सुखदेव गोस्वामी त्रिकालदर्शी हैं, और व्यास देव भगवान के साक्षात अवतार हैं। माया मुक्त जीवे नाही तोत ज्ञान, जीवे र कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। और व्यास देव को ज्ञान देने वाले नारद जी हैं, नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, और उस रास में नारद जी भी थे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, भगवान शिव और नारद दो लोग थे वहां पर, समझ गए ना? ऑल राइट, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।